ಆಧುನಿಗದೆ ಪಣ ಸಿದ್ಧೇ ಜೀವಠಾಣಸ್ ಅಮಲಿನ ಗುಣಚೂಲಿಯಂ ಓಚಂ. ಯಹ ಶ್ರೀ ವೀರಸೇನ ಆಚಾರ್ಯ ರಚಿತ ಧವಲಾ ಟೀಕಾ ಹೈ ಜೋ ಷಟ್ಖಂಡಾಗಮ ಗ್ರಂಥ ಪರ್ ಲಿಖಿ ಹುಯಿ ಹೈ ಜಿಸ್ಕೆ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಪುಷ್ಪದಂತ ಔರ್ ಭೂತಬಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಜಿನ್ಹೋನೆ ಶ್ರೀ ದರ್ಸೇನ ಆಚಾರ್ಯ ಕೆ ಉಪದೇಶ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಇಸ್ಕಿ ರಚನಾ ಕಿ ಥಿ ಔರ್ ಜೋ ಉಪದೇಶ ಹಮೇ ಮೂಲ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹುಯೆ ಹೈ. ಯೇ ಜೋ ಛಠಿ ಪುಸ್ತಕ ಚೂಲಿ ಕಾ ಸಂಬಂಧಿ ಹೈ ಉಸ್ಮೇ ಅಭಿ ಹಮಾರಾ ಹಾಂ ತೀಸರಿ ಚೂಲಿ ಕಾ ಜೋ ಚಲ್ ರಹಿ ಹೈ ಉಸ್ಮೇ ತೀನ್ ಮಹಾದಂಡಕ ಬತಲಾಯ ಉಸ್ಮೇ ಸೇ ಪ್ರಥಮ ಮಹಾದಂಡಕ ಕಿ ಬಾತ್ ಚಲ್ ರಹಿ ಹೈ. ಪಹಿಲಾ ಅಧಿಕಾರ ಹಮನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಮುತ್ಕೀರ್ತನ್ ದೇಖಾ ಔರ್ ದೂಸರಾ ಸ್ಥಾನ ಸಮುತ್ಕೀರ್ತನ್. ಸ್ಥಾನ ಸಮುತ್ಕೀರ್ತನ್ ಮೇ ಹಮನೆ ಬಂಧ ಕೆ ಸ್ಥಾನ ದೇಖೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೋ ಕೆ ಬಂಧ ಸ್ಥಾನ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಪ್ರಕೃತಿಯೋ ಕೆ ಬಂಧ ಸ್ಥಾನ ಹಮನೆ ದೇಖೆ ಥೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಕಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ. ಅಬ್ ಯಹಾಂ ಜೋ ಪಹಿಲಾ ಮಹಾದಂಡಕ ಹೈ ಪಹಿಲೆ ತೊ ಹಮನೆ ಕೌನ್ ಕೌನ್ ಸಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಹಾಂ ಕಹಾಂ ಬನ್ತಿ ಹೈ ಕಿತನಿ ಬನ್ತಿ ಉಸ್ಕಿ ಬಾತ್ ಕಿ ಥಿ. ಅಬ್ ಯೇ ಜೋ ಪಹಿಲೆ ಮಹಾದಂಡಕ ಕಾ ವಿಷಯ ಕ್ಯಾ ಹೈ ತೊ ಜೋ ಪ್ರಥಮೋಪಶಮ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಸನ್ಮುಖ ಉಸ್ಕೋ ಅಭಿಮುಖ ಕಹಾ ಐಸಾ ಜೋ ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿ ಜೀವ ಹೈ ಭಲೆ ವೊ ಭವ್ಯ ಹೋ ಯಾ ಅಭವ್ಯ. ಅಭಿ ಅಭವ್ಯ ತೊ ಉಸ್ಕೋ ಹಮ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಕೆ ಸನ್ಮುಖ ನಹೀ ಕಹಿ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಪರಂತು ಪ್ರಾಯೋಗ್ಯ ಲಬ್ಧಿ ಮೇ ಆತಾ ಹೈ ನ ಇಸ್ಲಿಯೆ ಉಸ್ಕಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಸೆ ಲೇನಾ ಉಸ್ಕೋ ಪ್ರಾಯೋಗ್ಯ ಲಬ್ಧಿ ತಕ್ ಆಯಾ ಹುವಾ ಜೀ ಉಸ್ಕಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಸೆ ಉಸ್ಕೆ ಭೀ ಕೌನ್ ಕೌನ್ ಸಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೋ ಕಾ ವಹಾಂ ಬಂಧ ಹೋತಾ ಹೈ ಉಸ್ಕಿ ಬಾತ್ ಯಹಾಂ ಬತಾಯೆಂಗೆ ಔರ್ ಕೌನ್ ಸಿ ಕಾ ನಹೀ ಹೋತಾ ಹೈ. ತೊ ಹಮನೆ ಕಲ್ ದೇಖಾ ಥಾ ಕಿ ಜಬ್ ಜೀವ ಪ್ರಾಯೋಗ್ಯ ಲಬ್ಧಿ ಮೇ ಆತಾ ಹೈ ತೊ ಸಬ್ಸೆ ಯೇ ಬಾತ್ ಯಹಾಂ ನಹೀ ಲಿಖಿ ಹೈ ಫಿರ್ ಭೀ ಸಮಜ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಮೇ ಪಹಲೆ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ ತೊ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾಂಡಕ ಘಾತ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಸತ್ತಾ ಮೇ ಪಡಿ ಹುಯಿ ಸಭಿ ಕರ್ಮೋ ಕಿ ಸ್ಥಿತಿ ಆಯು ಜಿತ್ನಿ ಹೈ ಉತ್ನಿ ರಹತಿ ಹೈ ಆಯು ಕೋ ಛೋಡ್ಕರ್ ಅನ್ಯ ಸಭಿ ಕರ್ಮ ಭಲೆ ವೊ ಶುಭ ಹೋ ಯಾ ಅಶುಭ ಕರ್ಮ ಹೋ ಸಭಿ ಕಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಃ ಕೋಡಾ ಕೋಡಿ ಸಾಗರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೈ ಇನ್ನೇ ಏಕ ಕೋಡಾ ಕೋಡಿ ಕೆ ಅಂದರ್ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೈ. ಅಬ್ ಜೊ ನಯಾ ಬಂಧ ವಹಾಂ ಹೋತಾ ಹೈ ವಹ ಭೀ ಅಂತಃ ಕೋಡಾ ಕೋಡಿ ಸಾಗರ್ ಕಾ ಹೋತಾ ಹೈ ಔರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂತರ್ಮೂರ್ತ ಮೇ ವೊ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂಧ ಜೋ ಹೈ ಜಿತ್ನಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬಾಂಧತಾ ಹೈ ವೊ ಘಟ್ತಿ ಚಲಿ ಜಾತಿ ಹೈ. ಪಹಿಲೆ ಬಾರ್ ಘಟ್ ಕಿತನಿ ಘಟ್ ಹೋಗಿ ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ತೊ ಪಲ್ಯ ಕಾ ಸಂಖ್ಯಾತ್ವ ಭಾಗ ಇತನಿ ಘಟ್ ಹೋತಿ ಹೈ ಫಿರ್ ಅಂತರ್ಮೂರ್ತ ಉತ್ನಾ 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 ಸಮಾನ ಬಂಧ ಹೋಗಾ ಫಿರ್ ಉಸ್ಮೇ ಔರ್ ಪಲ್ಯ ಕೆ ಸಂಖ್ಯಾತ್ವ ಭಾಗ ಇತನಿ ಘಟ್ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೈ ಔರ್ ಫಿರ್ ಸಮಾನ ಬಂಧ ಹೋತಾ ಹೈ ಅಂತರ್ಮೂರ್ತ ತಕ್ ಫಿರ್ ಉಸ್ಮೇ ಔರ್ ಘಟ್ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೈ. ಇಸ್ ತರಹ ಸೆ ಹಮನೆ ದೇಖಾ ಥಾ ಪಲ್ಯ ಕಮ್ ಹೋ ಜಾಯೆಗಾ ದೋ ಪಲ್ಯ ಕಮ್ ಹೋ ಜಾಯೆಗೆ ಸಾಗರ್ ಕಮ್ ಹೋ ಜಾಯೆಗೆ ಐಸೆ ಕರ್ತೆ ಕರ್ತೆ 700 ಸೆ 800 ಸಾಗರ್ ಜಬ್ ಕಮ್ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೈ ಸ್ಥಿತಿ ಔರ್ ನಯಾ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂಧ ಹೋನೆ ಲಗ್ತಾ ಹೈ ತಬ್ ವಹಾಂ ಜಾಕರ್ ಉಸ್ಕೋ ಏಕ್ 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 ಪ್ರಕೃತಿಯೋ ಕಾ ಬಂಧ ಭೀ ರುಕ್ತಾ ಚಲಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಅಪ್ರಶಸ್ತ ಪ್ರಕೃತಿಯೋ ಕಾ ಉಸ್ಕೋ ಕಹತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಧಾಪಸರಣ ಸ್ಥಿತಿ ಕೆ ಜೊ ಘಟನಾ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂಧಾಪಸರಣ ಕಹತೆ ಹೈ ಔರ್ ಜೊ ಪ್ರಕೃತಿಯೋ ಕಾ ಬಂಧ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಕೃತಿಯೋ ಕಾ ಅಶುಭ ಮೇ ಅಶುಭ ಐಸಿ ಜೊ ಪ್ರಕೃತಿಯಾ ಹೈ ಉನ್ಕಾ ಬಂಧ ಕ್ರಮ ಸೆ ರುಕ್ತಾ ಚಲಾ ಜಾತಾ ಹೈ ತೊ ಉಸ್ಕೋ ಕಹತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಧಾಪಸರಣ. ಏಕ್ ಸ್ಥಾನ ಹುವಾ ನಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಧಾಪಸರಣ ಕಾ ತೊ ಫಿರ್ ಔರ್ 700-800 ಸಾಗರ್ ಕಿ ಘಟ್ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೈ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂಧಾಪಸರಣ ಕೆ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಸ್ಥಾನ ಚಲೇ ಜಾತೆ ಹೈ ತಬ್ ಜಾಕರ್ ದೂಸರಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಧಾಪಸರಣ ಕಾ ಸ್ಥಾನ ಆತಾ ಹೈ ಔರ್ 700-800 ಸಾಗರ್ ಕಟೌತಿ ಹೋನೆ ಪರ್ ತೀಸರಾ ಸ್ಥಾನ ಚೌಥಾ ಸ್ಥಾನ ಐಸೆ ಕುಲ್ 34 ಸ್ಥಾನ ಹೈ ಉಸ್ಮೇ ಸೆ ಹಮನೆ ಕಲ್ 23 ಸ್ಥಾನ ದೇಖೆ ಥೆ. ಪಹಲೆ ತೊ 4 ಆಯು ಹೈ ಅಶುಭ ಆಯು ಪಹಲೆ ಲೇನಾ ತೊ ನರಕಾಯು ಕಾ ಯಾನಿ ಪಹಲಾ ಸ್ಥಾನ ಹೈ ನರಕಾಯು ಕಾ ಬಂಧ ರುಕ್ ಜಾತಾ ಹೈ ಹಮ ಅಭಿ ಕೌನ್ ಸಿ ವಹಾಂ ಪ್ರಕೃತಿ ರುಕ್ತಿ ಹೈ ಉಸ್ಕಿ ಬಾತ್ ಕರೆಂಗೆ. ದೂಸರೆ ಸ್ಥಾನ ಪರ್ ತಿರ್ಯಂಚ ಆಯು ತೀಸರೆ ಸ್ಥಾನ ಪರ್ ಮನುಷ್ಯ ಆಯು ಚೌಥೆ ಸ್ಥಾನ ಪರ್ ದೇವಾಯು ಪಾಂಚವಾ ಸ್ಥಾನ ಹೈ ನರಕ ಗತಿ ಔರ್ ನರಕ ಗತ್ಯಾನು ಪೂರ್ವಿ ದೋನೋ ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್. ಅಬ್ ಯೇ ಕುಚ್ ಸ್ಥಾನ ಐಸೆ ಹೈ ಕಿ ವಹಾಂ ಸಂಯೋಗ ರೂಪ ಸೆ ಜೊ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂತಿ ಹೈ ಉನ್ಕಾ ಬಂಧ ರುಕ್ ಜಾತಾ ಹೈ ತೊ ಯೇ 5 ಸ್ಥಾನ ಹುಯೆ. ಅಭಿ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತೋಂ ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಬತಾಯೆಂಗೆ ತೊ ಪಹಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲೇಂಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಸಾಧಾರಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫಿರ್ ಬಾದರ್ ಬಾದರ್ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಸಾಧಾರಣ ಔರ್ ಬಾದರ್ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ उसके बाद द्विंद्रिय अपर्याप्त, तीन्द्रिय अपर्याप्त, चतुरिंद्रिय अपर्याप्त, असंगी अपर्याप्त यानी असंगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त और संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त के स्थान चले गए, यानी इतना रुक जाता है। उसके बाद अभी पर्याप्तों के स्थान आएंगे। तो वहाँ कहते हैं कि पहले एक इंद्रिय को लेना है, तो सूक्ष्म पर्याप्त साधारण, सूक्ष्म पर्याप्त प्रत्येक, फिर बादर पर्याप्त साधारण और बादर पर्याप्त प्रत्येक। अभी यहाँ तक तो एक इंद्रिय का पर्याप्त पर्याप्त सभी बंधन मिट गया है, तो जो रिमेनिंग प्रकृति एक इंद्रिय की, एक इंद्रिय स्थावर और आतप, वे भी इसी स्थान पर बंद हो जाते। ये 18वां स्थान होगा शायद, 18वां है ना वो। हाँ। अभी इसके बाद द्विंद्रिय पर्याप्त, तीनिंद्रिय पर्याप्त, चतुरिंद्रिय पर्याप्त और असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, उसके आगे वाला जो है संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त का रहेगा, क्योंकि देवगति के साथ भी संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त बंधेगी। अभी इसके आगे तिर्यंच गति संबंधी, यानी तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी और उद्योत, इन प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। तो यहाँ तक हम कल आए थे, अब आगे हम पढ़ेंगे। हाँ, अभी प्रकृति अगर गिननी है तो चार आयु, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, और फिर सूक्ष्म को एक बार ही लेना, जिसको अपुनरुक्त प्रकृति कहते हैं, अपर्याप्त सभी कहने, अपर्याप्त को भी लेना, उसमें साधारण को भी लेना, पर्याप्त प्रत्येक को नहीं ले सकते हम, प्रत्येक शरीर नाम कर्म तो देवगति के साथ भी बंधेगा, ख्याल है ना क्या क्या गया वो। और फिर एक इंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, तीनिंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति, असंगी की हम अलग जाति तो नहीं गिनाते अपने 993 में, इतनी प्रकृतियां गई। अभी तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, आतप भी जाएगा, स्थावर भी चला जाएगा, स्थावर और आतप, ये जो हमने इसमें जो जो गिनी है उसको कहते हैं अपुनरुक्त। कल बात आई थी ना अपुनरुक्त का अर्थ क्या है, भाई आपका प्रश्न था ना अपुनरुक्त संबंधी, तो अपर्याप्त वाला संयोग हमने इतनी बार देखा, एक इंद्रिय के साथ अपर्याप्त, दो इंद्रिय के साथ अपर्याप्त, तीन इंद्रिय के साथ अपर्याप्त, परंतु अपर्याप्त प्रकृति को हम एक बार गिनेंगे कि अब इसके आगे अपर्याप्त प्रकृति बंधेगी ही नहीं, सूक्ष्म नाम कर्म बंधेगा ही नहीं, साधारण नाम कर्म बंधेगा ही नहीं। अब एक इंद्रिय के साथ वो बादर वाला हमने देखा था, परंतु देवगति बांधेगा, पंचेंद्रिय जाति बांधेगा, तो उसके साथ बादर भी है, पर्याप्त भी है, वो तो प्रकृतियां बंधेगी, प्रत्येक शरीर वाली प्रकृति बंधेगी उसको। तो यहाँ उसका नाम यानी संयोग रूप से वो नहीं बनती है उस विशिष्ट प्रकृति के साथ वाली, ख्याल है, दोबारा उसके नाम देखेंगे हम तो ये ख्याल में आता है कि कौन कौन सी है उसमें पुनरुक्त, और पुनरुक्त नहीं बार बार, अभी पर्याप्त का इतनी बार नाम लिया, द्विंद्रिय पर्याप्त, तीनिंद्रिय पर्याप्त, चतुरिंद्रिय पर्याप्त, फिर भी पर्याप्त नाम कर्म तो है वहां पर, क्योंकि देवगति, पंचेंद्रिय जाति और पर्याप्त नाम कर्म तो बांधेगा वो जी, इस तरह से लेना। अभी हम पेज पर आए हैं, 23वां भंग स्थान हमने देखा था, भंग नहीं स्थान, हर दो प्रकृति बंधापसरण के स्थान के बीच में स्थिति बंधापसरण होता ही रहता है, और वो भी एट अ टाइम पल्य का संख्यात्वा भाग, और ऐसे करते करते सागर शतपृथक्त्व यानी 700 से 800 सागर वर्ष का स्थिति बंध घट जाता है, तब जाके आगे वाला स्थान आता है। तो अभी चौथी लाइन में हम आ गए, ये तिर्य गति, तिर्य गत्यानुपूर्वी और उद्योत वाला 23वां नंबर हो गया था अपना, उसके आगे हम पढ़ेंगे अभी। उससे सागरोपम शतपृथक्त्व प्रमाण स्थिति उतर कर इन्हें जब उतनी और घट जाती है, तब निज गोत्र का बंध विच्छेद होता है। ये 24 नंबर है, निज गोत्र। उससे सागरोपम शतपृथक्त्व प्रमाण स्थिति उतर कर, अब ये फिर एक रूप संयोग रूप एक इतने प्रकृतियों का जो चार गिनाएंगे यहाँ, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय, इन चार प्रकृतियों का एक साथ बंध विच्छेद होता है। ये 25 नंबर है इसका। हमने पहले दूसरे गुणस्थान की बंध विच्छेद गिनाई थी, उसमें ये सारी प्रकृति आती है। क्योंकि अभी ये जीव जो है सम्यक तो होगा तो यहाँ से एकदम चौथे में जाने वाला या ऊपर के गुणस्थानों में, फिर भी अभी अभव्य भी होगा तो भी जब तक वो प्रायोगिक लब्धि में है, जब तक तत्व का विचार भी उसका चल रहा है, वो तो सम्यक तो प्राप्त करने वाला नहीं है, परंतु उतने काल तक उसके भी इन अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध रुक जाएगा। उससे सागरोपम शतपृथक्त्व प्रमाण स्थिति उतर कर अब ये 26 नंबर यहाँ आ जाएगा। हुंड संस्थान और असंप्राप्ता सुरपाटिका शरीर सहनन, इन दोनों प्रकृतियों का एक साथ बंध विच्छेद होता है। अभी मैंने आसान तरीका बताने के लिए उसमें भी पंचलब्धि के भी उसमें ब्रैकेट में लिखा था, ये छठा संस्थान और छठा सहनन। इस तरह से हम याद रखेंगे तो वो ख्याल आता है कि कैसे कैसे एक एक संस्थान और एक एक सहनन एट अ टाइम चले जाएंगे। उससे सागरोपम शतपृथक्त्व प्रमाण स्थिति उतर कर नपुसक वेद का बंध विच्छेद होता है, ये 27 नंबर। नपुसक वेद, फिर उससे सागरोपम शतपृथक्त्व प्रमाण स्थिति उतर कर वामन संस्थान और कीलित शरीर सहनन, ये कौन से नंबर का है? पांचवा नंबर का है ना। तभी क्रम से एक एक नंबर चला जाएगा। तो 26 नंबर पर हमने हुंड संस्थान देखा था, 27 नंबर पर यानी वो पांच छठा संस्थान सहन है, 27 नंबर पर नपुसक वेद देखा, अब यहाँ 28 नंबर पर वामन संस्थान और कीलित शरीर सहन है, इनकी बंदे विच्छित्ति होती है। उससे सागरोपम शतपृथक्त्व प्रमाण स्थिति उतर कर कुब्ज संस्थान और अर्धनाराज शरीर सहनन, ये चौथे नंबर का संस्थान और सहनन, इन दोनों प्रकृतियों का एक साथ बंध विच्छेद होता है। यानी अभी ये प्रकृतियां यहां से आगे नहीं बंधेगी। कब तक? ये करण लब्धि के अंत समय तक की बात चल रही है। कुछ प्रकृतियां तो आगे भी नहीं बंधेगी, क्या है ना, परंतु जैसे यहाँ तो मिथ्यात्व वगैरह का बंध हो रहा है करण लब्धि के अंत समय तक। मोहनी वाला जो है मिथ्यात्व 16 कषाय का बंध करण लब्धि के अंत समय तक हो रहा है यहाँ से लेकर, परंतु उपशम समित्व के पहले समय से मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का बंध नहीं होगा, और इसमें से अन्य कुछ का बंध शुरू हो जाएगा प्रथम ये उपशम समय के काल के बाद। उससे ये 29 नंबर के बाद नीचे से तीसरी लाइन अंत में, उससे सागरोपम शतपृथक्त्व प्रमाण स्थिति उतर कर स्त्रीवेद का बंध विच्छेद होता है, ये 30 नंबर देना इसको स्त्रीवेद का। और उससे सागरोपम शतपृथक्त्व प्रमाण स्थिति उतर कर स्वाति संस्थान और नाराज शरीर सहनन, ये 3 नंबर का संस्थान और सहनन है, 31 नंबर पर। उससे अब अगले पृष्ठ पर, उससे सागरोपम शतपृथक्त्व प्रमाण स्थिति उतर कर न्यग्रोध परिमंडल संस्थान और वज्र नाराज शरीर सहनन, ये 2 नंबर का संस्थान और सहनन है, ये अपना 32 नंबर का स्थान है, 32 नंबर वाला। इन दोनों प्रकृतियों का एक साथ बंध विच्छेद होता है। उससे सागरोपम शतपृथक्त्व प्रमाण स्थिति उतर कर अब मनुष्य गति, ये 33 नंबर, मनुष्य गति के साथ साथ वाला मनुष्य गति, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, वज्र वृषभ नाराज, ये वज्र वृषभ वज्र नाराज लिखा है, उसका अर्थ वही होता है। वज्र शब्द एक बार लगाओ या दो बार लगाओ, जैसे हम अगुरु लघु में एक बार अ लगाते हैं ना, दोनों के लिए वैसे वज्र का ऋषभ और वज्र का नाराज शरीर सहनन और मनुष्य गति प्रायज्ञानों पूर्वी इन पांचों प्रकृतियों का एक साथ बंध विच्छेद होता है। उससे सागरोपम शतपृथक्त्व प्रमाण स्थिति उतर कर अब ये 34 नंबर का स्थान है। असाता वेदनीय अरति शोक अस्थिर अशुभ और अयशस कीर्ति इन छह प्रकृतियों का एक साथ बंध विच्छेद होता है। ये जे छह प्रकृति छठे गुणस्थान के बंध विच्छित्ति वाली है वो यहाँ पर बंध विच्छेद होता है, वहां वापस वो बंधेगी बाद में चौथे गुणस्थान में, परंतु अभी विशुद्धि बहुत अनंत गुणी अभी यहाँ बढ़ेगी, अभी और भी आगे अनंत गुणी तो उसमें अपूर्व करण करण में करण परिणामों में बढ़ेगी, परंतु यहाँ भी विशुद्धि बहुत बढ़ रही है। तो हमें तो क्या लगता है कि उपवास करे कुछ दान दे तो शुभ भाव है, तो यहाँ कैसे शुभ भाव है? तत्व विचार के कारण, जो मैक्सिमम यानी वो उच्च क्वालिटी के हैं जिसके कारण कर्मों में भी ऐसी ऐसी अवस्थाएं बन जाती हैं। तो तत्व विचार करने के लिए ऐसा किसी को लगता नहीं है हम कुछ शुभ भाव है या कुछ शुभ भाव हो रहे हैं। स्वाध्याय से करने से क्या होगा, कुछ करने से होगा ऐसा लगता है ना, यानी कुछ क्रिया में ही हमने शुभ भाव माना है, भाव को अलग जानते ही नहीं है। शरीर की क्रिया हो, उपवास हो, कोई यात्रा चढ़ के पर्वत पहाड़ चढ़ के आवे, भले वो चढ़ते समय दूसरा कोई विचार चले कोई बात नहीं है, डोली में बैठे कोई वांधना नहीं, परंतु डोली में बैठे और तत्व विचार करे तो कोई हर्जा नहीं। वो तो शरीर का जो कुछ कमजोरी है कोई चढ़ नहीं सकता है, ख्याल है ना, परंतु हम क्या मानते हैं, हमने 9 घंटे में इतनी वंदना की, हमने 12 घंटे में की, उसी में हम अपने को कुछ बड़प्पन मान लेते हैं। कुछ क्रिया करने में शरीर की, वो भी जड़ की क्रिया, ये नहीं समझते हम। तो ये तत्व विचार की ही महिमा है सब, उसमें ये तो इतनी प्रकृतियों का बंध अपने आप रुक जाता है। देखो हमने कल तीय गति तक तो देखा था, उसके आगे हम थोड़ा देखेंगे फिर दोबारा। देखो देखो संस्थान नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि अभी देवगति का बंध हो रहा है और समा चतुरस्र संस्थान उसके साथ बंधेगा, तो सहनन को क्यों लिया? क्योंकि मनुष्य सहनन जो है वो मनुष्य गति का जो बंध है, पहले हमने बंध के स्थान देखे थे, मनुष्य गति वाला कितने प्रकृतियों का बंध देखा था, नहीं मनुष्य गति वाला नाम कर्म का, हाँ हाँ 30, 29 और 25 वाला तो अपर्याप्त वो उसके साथ था, और 30 वाला मनुष्य गति तीर्थंकर प्रकृति वगैरह, और 29 वाला बिना तीर्थंकर प्रकृति का जो है। तो मनुष्य गति के साथ साथ सहनन का बंध होता है, परंतु देवगति जो बांधने वाला है उसको सहनन का बंध नहीं है। तो ये जो 33 नंबर का जो स्थान है उसमें मनुष्य गति लिया, मनुष्य गत्यानुपूर्वी लिया, मनुष्य गति है तो औदारिक औदारिक अंगोपांग भी बंधेगे और वज्र ऋषभ नाराज सहनन बंधेगा, परंतु यहाँ ये बंध रुक जाता है। ये किसकी अपेक्षा से बातें चल रही, मनुष्य और तिर्यंचों की अपेक्षा से? नहीं, देवों में बहुत सारे स्थानों में भेद है, वो बताएंगे आगे। यहाँ तो ये पहला महादंडक जो है वो तिर्यंच और मनुष्य की अपेक्षा से ही है, वो कौन से बांधते हैं और कौन से नहीं बांधते, ये जो सभी पूरे 34 स्थान है ये तो मनुष्यों के हो गए, मनुष्य तिर्यंचों के। देव और नारकियों के बारे में कुछ स्थान हो तो जो कुछ बांधते ही नहीं तो उनको बंध का अपसरण कैसे होगा? जैसे देव है वो सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय कुछ बांधते ही नहीं है तो उनका वो अपसरण हुआ ऐसा कैसे कह सकते हम? जितना बंध हो रहा है उतने में से कौन से स्थान गए उनके, उसकी बात करेंगे, है ना? ख्याल में आता है? जो स्वयं देव है, मिथ्या दृष्टि है, अभी वो सम्यक्त्व के सन्मुख है, तो ऑर्डिनरी देव भी सूक्ष्म को नहीं बांधता है, साधारण को नहीं बांधता, अपर्याप्त को नहीं बांधता है, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय वो आदि जातियों को नहीं बांधता है, तो उसके वो बंध स्थान है ही नहीं है, तो उसमें से वो प्रकृति बंधर अपसरण हुआ या विच्छित्ति हुई ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो ये जो यहाँ लिस्ट दी है 34 स्थानों की, ये मनुष्य और तिर्यंचों की अपेक्षा दी है। मनुष्य गति अभी नहीं बांधेगा। ये मनुष्य जो सम्यक्त्व प्राप्त करने जा रहा है, अभी मनुष्य जो प्रायोगिक लब्धि में है, प्रायोगिक लब्धि वाला मनुष्य जो है वो मनुष्य गति का बंध नहीं करेगा, उसके लिए है। परंतु जो प्रायोगिक लब्धि वाला देव है वो मनुष्य गति का बंध करेगा, तिर्यंच गति का बंध उसका रुक जाएगा, परंतु उसको मनुष्य गति का तो बंध होता रहेगा। तो ये 34 हमने स्थान देखें। तेईस के आगे मैं फिर दोबारा इसलिए क्योंकि हमारे पहले 23 तो हमने रिवीजन कर ली ना, तो तिर्यंच गति के बाद एक तो नीच गोत्र नहीं बनता है, 24वां स्थान, फिर 25वें स्थान में हमने संस्थान और सहनन की बात की थी ना, 25 में वो अप्रशस्त, सॉरी अप्रशस्त विहाय गति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय, इन चार का। उसके बाद वो छठा संस्थान छठा सहनन 26वां, और 27 में नपुसक वेद है बीच में। उसके बाद में वामन संस्थान किलिचर यानी 5वां संस्थान और सहन 28 नंबर पर। उसके बाद चौथा संस्थान और सहनन 29 नंबर पर, और उसके बाद स्त्री वेद का 30 नंबर पर। 31 नंबर पर स्वाति संस्थान और नाराज, और उसके बाद 32 नंबर पर नगरोध परिमंडल और वज्र नाराज, और 33 नंबर पर ये मनुष्य गति औदारिक अंगोपांग वज्र ऋषभ नाराज सहनन और मनुष्य गति प्राज्ञान पूर्वी। और जो लास्ट जो है 34वां स्थान, उसमें वो असाता वेदनीय अरति अस्थिर वगैरह शोक भय नहीं, ये 6 जो है ना, असाता वेदनीय अरति शोक अस्थिर अशुभ और अयशस कीर्ति, जो छठे गुणस्थान की बंध विच्छित्ति जो जिन 6 प्रकृतियों की है, वे प्रकृति यहाँ भी नहीं बंधेगी, बाद में फिर दोबारा बंधना शुरू हो जाएगा, इस काल में नहीं बंधेगी। शंका, यह प्रकृतियों के बंध विच्छेद का क्रम किस कारण से है? क्रम बताए ना, क्योंकि एक एक पोजीशन पर आते आते आगे आगे जितनी विशुद्धि आगे आगे बढ़ेगी उतने उतने तब वो प्रकृतियों का बंध रुक जाएगा। एक साथ सभी की सभी का बंध विच्छेद नहीं होता है, क्योंकि विशुद्धि क्रम से बढ़ रही है उसके कारण। समाधान, अशुभ अशुभतर और अशुभतम के भेद से प्रकृतियों का अवस्थान माना गया है, उसी अपेक्षा से यह प्रकृतियों के बंध विच्छेद का क्रम है। जो प्रकृतियों का बंध विच्छेद सबसे पहले होता है वो अशुभतर अशुभतम है, मैक्सिमम अशुभ नरकायु। तो विशुद्धि जितनी बढ़ेगी सबसे पहले सबसे ज्यादा अशुद्ध प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, फिर क्रम से उतने उतने प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। देवायु है तो प्रशुद्ध प्रकृति, परंतु आयु का बंध ही रुक जाता है यहाँ पर। आयु का बंध अत्यंत विशुद्ध परिणामों में नहीं होता है, ख्याल है ना? हाँ।
देवायु नहीं बनती है तो जरा तकलीफ
होती है। हाँ। वो है प्रशस्त प्रकृति, परंतु आयु का बंध कुछ अच्छी बात नहीं है ना। किसकी बात? नहीं, आपका प्रश्न फिर पूछना।
हम लोग मनुष्य गति का जो बंध का स्थान देखा 30-31 वाला था,
मनुष्य गति का नहीं था वो, देवगति संबंधित।
हाँ, तो
ये 30 वाला नहीं है, ये जो हमने प्रकृति बंधापसरण के स्थान कितने हैं वो 1, 2, 3, 4 जो हमने जो पहले स्थान पे नरकायु का बंदर रुक जाता है, दूसरे स्थान पर तीर्यंचायु का, वो नंबर डाले हमने। देखो अभी हम ये समाधान के नीचे का पैराग्राफ, यह प्रकृतियों के बंध विच्छेद का क्रम 46 कौन सी प्रकृतियां? हाँ देखो हम इसी में से गिनाएंगे, नहीं 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 हम इसी में गिनाएंगे ना। चलो पंचलब्धि पुस्तक में तो लिखी है, अब हम पेज नंबर 136 निकालना। तो पहले तो चार आयु, चार हो गए ना, चार आयु है 136, उसमें हमने 2, 3 और 4 नंबर डाले थे, वो तो चार प्रकृति, नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी ये दो हो गई, आप गिनना आगे। हाँ फिर सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, तीनों को लेना, अलग अलग जगह आएगी परंतु वो हम ले लेंगे उसको। नहीं नहीं अभी वो नहीं आएगी अभी। फिर द्विंद्रिय, अभी द्विन उसके साथ लिखना, एकेंद्रिय स्थावर आतप, तीन और एकेंद्रिय स्थावर आतप। हाँ फिर द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय, अभी उसके बाद। हाँ अभी असंगी की अलग नहीं जाती आती। अब 33 नंबर पर जो है तिर्यंच गति तिर्यंच गत्यानुपूर्वी और उद्योत, गति 23 नंबर, मैंने 33 कहा क्या, 23 नंबर। हाँ तीन है। हाँ फिर उसके बाद नीच गोत्र, उसके बाद चार अप्रशस्त व्याय गति दुर्भग दुस्वर अनादेय। हाँ उसके पास देखिए पांच संस्थान और पांच सहनन, इतना तो अभी ले लो, वो तो बाद में उसका कॉम्बिनेशन अलग। अच्छा ठीक है, गिनना है तो पांच संस्थान और छह सहनन, नपुसक वेद, स्त्री वेद, अब मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक औदारिक अंगोपांग और वज्रवृषम नारायण, वो ले लिया था, चार लेना यहाँ, वज्रवृषम नारायण पहले गिना था। हा? और अंतिम छह असाता वेदनीय अरति शोक वगैरह वगैरह, कितनी हुई 40 हो गए, बहुत अच्छा। हाँ तो इसको कहते हैं अपुनरुक्त, जैसे सूक्ष्म नाम ये चार बार आया था, सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण सूक्ष्म अपर्याप्त प्रत्येक, सूक्ष्म पर्याप्त साधारण सूक्ष्म पर्याप्त प्रत्येक, सूक्ष्म को एक बार गिना है क्योंकि अभी सूक्ष्म प्रकृति बंधेगी ही नहीं, इसको कहते हैं अपुनरुक्त प्रकृति। बुक में ऐसा एक साथ 46 अलग से नहीं लिखी है, परंतु उसमें मैंने ऐसा अपुनरुक्त का अर्थ बताया, उसमें अपुनरुक्त किसको कहना, जैसे पर्याप्त शब्द बहुत बार आया है फिर भी उसका बंदर रुका नहीं है, आपने पढ़ा, वो बहुत अच्छी बात है, उसमें तो एक के नीचे एक लिखा है इसलिए वो ख्याल आता है कि वो अपर्याप्त अपर्याप्त है फिर पर्याप्त पर्याप्त है, यानी 34 स्थानों में मिलकर 46 प्रकृतियों का बंदर रुक जाता है। आगे मैंने वहाँ ये लिखा है कि हम तो देखते हैं कि सम्यक तो होने पर 41 प्रकृतियों का बंध रुक गया है और यहाँ तो 40 की बात कर रहे हैं, है ना, परंतु ये असाता वेदनी आदि कितने प्रकृतियों का बंध शुरू हो जाएगा और मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का बंध रुक जाएगा, तो सम्यक तो होने के बाद जो है वो अलग कैलकुलेशन होगा उसमें। हाँ ये खतरनाक बंधने वाली मिथ्यात्व अनंत अनुबंधी तो है, अभी बंध रही है वो तो है सबसे, इसीलिए इसको अभी हम संवर हुआ नहीं कहेंगे। आगे वे भी उसमें चर्चा की है कि क्या यहाँ इतनी प्रकृतियों का बंध रुक गया है तो संवर हो गया क्या, बंध के रुकने को संवर कहते ना, तो इसको संवर नहीं कहेंगे। क्यों? अभी तो यहाँ पाप प्रकृतियों का बंध रुक गया, पुण्य प्रकृति का हो रहा है। जीव खोटे परिणाम करेगा तो पुण्य प्रकृति का बंध रुक जाएगा और पाप प्रकृति बांधेगा, तो उसको पुण्य प्रकृति का संवर कहना पड़ेगा, तो उसको वो संवर नहीं कहेंगे। तो संवर कब से शुरू होगा? जब मिथ्यात्व का बंध रुक जाएगा, सम्यत्व की प्राप्ति हो गई, उसके साथ जितने जितने का बंध रुक जाएगा उसको हम संवर कहेंगे। चौथे गुणस्थान में 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होता तब हम उसको संवर कहेंगे। अभी यहाँ बस ये प्रकृति बंधापसरण में बंध रुक गए, बंधे विच्छित्ति भी कहा यहाँ, परंतु जो अभव्य जीव है उसके तो सम्यक तो होने वाला नहीं है। कुछ काल तक वो प्रकृतियों का बंध रुक गया है, फिर परिणाम बिगड़ गए, फिर उसका बंध हो जाएगा। आपका प्रश्न ऐसा है कि सुनो आपका कहाँ घोटाला हो रहा है मुझे पता चल गया। आप कहते कि सम्यक तो होने पर हुंडक संस्थान का बंध नहीं होता है, हुंडक संस्थान की क्या बात है, अन्य पांचों संस्थानों का बंध रुक जाता है। और आप ऐसा भी कहते हैं कि मोक्षगामी जीव को भी हुंडक संस्थान होता है क्योंकि छह संस्थानों का उदय 13वें तक है, उदय की बात है, अभी नया बंध नहीं होगा। आगे के भाव में नहीं, परंतु हाँ बराबर है, परंतु जिस जीव ने उसी भाव में सम्यक तो प्राप्त करके उसी भाव में अभी मोक्ष जाने वाला है, हाँ उसके लिए छह संस्थानों का उदय हो सकता है। छठे की बात ही क्या है, उसको तो समचतुर्थ संस्थान ही होगा। समचतुर्थ संस्थान ही रहेगा उनके, ख्याल है ना, जो सम्यक तो प्राप्त होने के बाद अभी उस समचतुर्थ संस्थान का ही बंध कर रहा है।
इन शॉर्ट ऐसा समझिएगा, जिन्होंने पहले सम्यक तो प्राप्त किया और उनके कुछ भव बाकी है मोक्ष में जाने के लिए, उनके समचतुर्थ संस्थान होगा आखिरी भव का, और जिसने इसी भाव में सम्यक तो प्राप्त किया है और इसी भाव में वह मोक्ष भी जाने वाला है, वो कोई भी संस्थान वाला रहेगा, उसमें कोई वादा नहीं है। क्यों? संस्थान जो है वो मोक्ष में जाने के लिए मदद भी नहीं करता है और अटकाव भी नहीं करता है।
पर सहनन उसका अंतिम शरीर चरम शरीर वाला, उसके तो वज्रवृषभ नाराज सहनन ही होगा जन्म से, भले वो बाद में सम्यक तो प्राप्त करेगा और उसी भाव में मोक्ष जा सकता है। अभी भरत के पुत्र वो इंद्रगोप अवस्था से आए मनुष्य में और उसी भाव में मोक्ष चले गए, बराबर। कोई तो ऐसे भी होते हैं कि वो तो निगोद में से आते हैं और उसी भाव में मोक्ष चले जाते हैं, तो उन्होंने वज्र वृषभ नारा सहनन बांध कर आए थे, तभी तो उसका उदय होगा, तभी उसी भाव में मोक्ष जाएंगे वे। तो वहाँ कैसा परिणाम किया होगा वज्र वृषभ नारा सहनन बांधने जैसे, ख्याल आता है? ये तो सहज होता है वैसे, ये ऐसे कोई चुन चुन कर ऐसे परिणाम करके कोई हमको ये सहन बांधना है कि संस्थान बांधना है, ऐसी कोई बात ही नहीं हुआ। नहीं, आपका क्वेश्चन बराबर है, जो सम्यक्तों के साथ जन्मा है, सम्यक्तों के साथ जन्मा है उसके समचतुरस्र संस्थान ही होगा, और जो मिथ्यात्व में जन्मा है उसके हो सकता है समचतुरस्र संस्थान, वो संस्थान होने में कोई बाधा नहीं, परंतु उसमें कोई भी संस्थान हो सकता है और वही जीव मोक्ष चला जा सकता है। जैसे वेदों के बारे में हमने, तीनों वेद वाले जीव है वो भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जो सम्यक्तों के साथ जन्मा है उसके तो पुरुष वेद ही होगा, वैसे यहाँ संस्थान में भी समझना। यानी कोई शरीर का वर्ण है कि शरीर का आकार है, वो तो मोक्ष मार्ग में बाधक है ही नहीं है, है? हम तो अपने को क्यों शरीर के आकार से हीन दीन समझते हैं ना, या कोई अपने को बहुत अच्छा समझता है, कोई सुपीरियर समझता है, कोई इंफीरियर समझता है। देखो आपका सवाल आ गया ना प्रश्न का, हाँ जवाब, सवाल नहीं जवाब। यह प्रकृतियों के बंधे विच्छेद का क्रम विशुद्धि को प्राप्त होने वाले भव्य और अभव्य, क्या लिखा, अभव्य को भी है ये विच्छित्ति उसकी भी हो गई है, मिथ्यादृष्टि जीवों के साधारण अर्थात समान है, दोनों के लिए ये समान है क्रम। ऐसा नहीं कि अभव्य उसके लिए कुछ अलग क्रम होगा या उसके लिए कुछ कम प्रकृतियों का विच्छेद होता होगा, ऐसी बात नहीं है। किंतु अधकरण अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण, ये तीन करण भव्य मिथ्यादृष्टि जीव के ही होते हैं। ये सम्यक्त के पहले वाले जो करण होते उसकी बात चल रही है, खाली ऐसा नहीं पढ़ना कि तीन करण भव्य मिथ्यादृष्टि को ही होते हैं, क्योंकि आगे चलकर भी जो जब जब करण परिणाम होंगे तब तक वो सम्यक दृष्टि जीव है। जब क्षोभ में से क्षायिक सम्यक तो होता है तभी भी तीन करण होते हैं, जब श्रेणी मानता है तभी भी तीन करण होते हैं, अनंतानुबंधी विसंयोजन करता है तभी भी तीन करण होते हैं, परंतु यहाँ अपना विषय प्रथम ऑप्शन सम्यक्त के अभिमुख जीव की बात चल रही है, इसलिए यहाँ भव्य मिथ्या दृष्टि के ही होता है ऐसा लिखा। क्योंकि अन्यत्र अर्थात अभव्य जीवों में वे पाए नहीं जाते, कौन, करण लब्धि के परिणाम, कहा भी है ऊपर जो गाथा है एक नंबर की उसको पढ़ेंगे, खय उव समो विसोही देशन पाओ गकरण लत्तीय चत्तारी विसामन्ना करणम पुनहो इसम्मते। देखो ये पांचों ही लब्धियों के नाम इसमें आ गए। देखे खय उव समो यानी क्षोभसम लब्धि, विसोही यानी विशुद्धि लब्धि, देशना यानी देशना लब्धि, पाओग यानी प्रायोगिक लब्धि और करण लब्धि, ये तो पांच तो लब्धि, उसमें से चत्तारी भी सामान्य, चार तो सामान्य है साधारण है, इसमें भव्य और अभव्यों में पुनः करणम पुनः हो ही सम्मत्ते, और ये जो करण लब्धि है वो सम्यक तो प्राप्त करने वाले के होती है, क्योंकि करण लब्धि में प्रवेश किया तो सम्यक होगा ही उसके अनंतर। नीचे उसी का अर्थ दिया है, देखिए क्षोभसम विशुद्धि देशना प्रायोग्य और करण, ये पांच लब्धियां होती है, उनमें से प्रारंभ की चार तो सामान्य है अर्थात भव्य और अभव्य जीव इन दोनों के होती है, किंतु पांचवी करण लब्धि सम्यक्त उत्पन्न होने के समय भव्य जीव के ही होती है, यानी करण लब्धि पूर्वक ही सम्यक्त की प्राप्ति होती है। इन उपर्युक्त प्रकृतियों के बंध से व्युच्छिन्न होने पर पूर्व प्ररूपित यानी पहले बताई गई अवशिष्ट प्रकृतियों को, रिमेनिंग प्रकृतियों को सम्यक्त्व के अभिमुख तिर्यंच और मनुष्य मिथ्यादृष्टि जीव तब तक बांधता है जब तक कि वह मिथ्यादृष्टि गुणस्थान के अंतिम समय को प्राप्त होता है। मिथ्यात्व गुणस्थान का अंतिम समय कौन सा है, करण लब्धि का अंतिम समय यानी अनिवृत्ति करण का अंतिम समय, वो मिथ्यात्व गुणस्थान का अंतिम समय है, क्योंकि उसके पश्चात वाले समय में सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। देखो ये जो 34 बंधापसरण कहे स्थान, उसमें जो हमने 46 प्रकृतियों का बंध नहीं होता देखा है, इनको छोड़कर रिमेनिंग प्रकृतियों का बंध होता है मिथ्यादृष्टि, ये प्रायोगिक लब्धि वाला, परंतु उसमें नहीं होता वाले प्रकरण में हमने तीर्थंकर का नहीं होता ऐसा देखा था, है ना? देखो ये किसका होता है ये उन्होंने पहली लिस्ट बता दी है, 133 पृष्ठ पर कितनी कितनी प्रकृतियों को बांधता है, तो हमें उसकी जरा संख्या देखेंगे। देखो, पांचों ज्ञानावरणीय, हाँ 71, ये 133 पृष्ठ पर हमने उसमें संख्या लिखाई थी ना। नीचे हमने हिंदी का अर्थ नहीं लिखा था, उन्हें लिखवाया था। हाँ, तो पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, ये साता वेदिनी एक होगी, गिनना आप, एक मिथ्यात्व और 16 कषाय, कितने हुए 32। पुरुष वेद, हास्य रति, भय और जुगुप्सा 37 हो गए। हाँ, अब आगे देवगति, पंचेंद्रिय जाति, वैक्रेयिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रेयिक शरीर अंगोपांग, वर्ण गंध रस स्पर्श, देवगति प्रायज्ञानुपूर्वी, अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास, प्रशस्त विहाय गति, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक, स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदेय यशस कीर्ति और निर्माण, फिर उच्च गोत्र और पांच अंतराय, 71 हो गए ना। और 46 को नहीं बांधता, कितने हो गए उसमें? तीर्थंकर और आहारक द्विक नहीं बांधेगा। ये तो कौन से बंध विच्छित होते, तो 46 की। हाँ, और कौन सी बांधता है वो बताया, और कौन सी इस मिथ्या तो गुणस्थान में तो बांधते ही नहीं कोई भी जीव, क्योंकि मिथ्या तो गुणस्थान में बंध योग्य प्रकृतियां 145 ही है। हाँ, वो 100 उसमें से, हाँ नहीं नहीं बराबर है। देखो इसमें, इसमें जो है ना स्पर्श रस गंध वर्ण, तो उसकी तो हर एक की ऐसी अलग अलग गिनाएंगे हम, तो उसकी स्पर्श की 8 पर्याय, रस की 5 है, वर्ण की 5 है और गंध की 2 है। इसके बदले स्पर्श रस गंध वर्ण 4 ही बता दी, तो वहाँ वो 16 घट गई। हाँ, और ये जो 5 शरीर है बंधन और संघात के भी अलग अलग नहीं गिनना है, तो उसकी 10 कम करना। हाँ, तो उसमें से 120 जो है बंध योग्य 120 है, सभी प्रकृतियों की संख्या 122 होती है, 148 में से ये कम करना। 16 तो स्पर्श संबंधी, हाँ क्योंकि हमने वो 4 ही गिना है ना, 4 में सब आ गए, और वो 10 बंधन और संघात के, 26 है, तो 148 में से 26 गए, 122 रह गए। परंतु सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति बंध योग्य नहीं है, तो बंध योग्य प्रकृतियां 120 होती है, उसमें से तीर्थंकर और आहारक द्विक मिथ्या दृष्टि को बनती ही नहीं है, तो मिथ्या दृष्टि में बंध योग्य प्रकृति 117। अब 117 का हिसाब लगता है कि नहीं, देखना। 71 को बांधते हैं और 40 को नहीं बांधते हैं। हाँ, नहीं बांधने वाले, हाँ नहीं, परंतु वो बंधने योग्य कितनी थी 117, उसमें से विच्छित्ति कितनी की होगी 40 की, तो अभी बंद कितने का हो रहा है 71 का, इस तरह से लेना उसको।
लास्ट सेंटेंस देखें,
हाँ 117 में से वो 40 नहीं बांध रहा है, हाँ वो तो बनती ही नहीं किसी भी मिथ्या दृष्टि को, हाँ इसलिए बंद विच्छित्ति उसको नहीं कहना है। बंध विच्छित्ति किसको कहना, जो बांध रहा था और जो रुक गया है उसको बंध विच्छित्ति कहेंगे। इसलिए अभी जो देवगति वाला जो बंध है, वहाँ 117 का तो बंध है ही नहीं, वो 101 का वगैरह बंध होगा वहाँ, उसमें से हाँ 104 वो पहले स्वर्ग की अपेक्षा बराबर है, उसमें एकेंद्रीय स्थावर आया तब भी बांध सकता है, इसलिए वहाँ 104 लिया, और नारकी जी तो 101 को बांधेगा। उसमें से कितनी बंध विच्छित्ति हुई उसकी बात यहाँ बताएंगे। देव जो है मिथ्या दृष्टि प्रथम उपशम सम्यक के सन्मुख है, वो कितना बांधता है वो आगे विषय आएगा दूसरे चैप्टर में। तो 117 में से यहाँ 46 का बंदर रुक गया। ये भी सम्यक तो होने से पहले ही इतना बंद रुक जाता है और फिर उसमें से बंद विच्छित हो जाती है। देखो ये 140 पृष्ठ पर हम आए हैं, फिर ये पहला वाक्य पढ़ती हूँ। इन उपर्युक्त प्रकृतियों के बंद से विच्छित न होने पर, उपर्युक्त ने अभी ये ऊपर बताए हुए उपर्युक्त बंध की विच्छित होने पर, पूर्व प्ररूपित पहले बताए हुए अवशिष्ट प्रकृतियों को यानी 71 प्रकृतियों को सम्यक्त के सन्मुख अभिमुख तिर्यंच और मनुष्य मिथ्यादृष्टि जीव तब तक बांधता है जब तक कि वह मिथ्यादृष्टि गुणस्थान के अंतिम समय को प्राप्त होता है। करण लब्धि के अंतिम समय तक यही बात चलेगी, 71 प्रकृतियों का बंध होगा, 46 का विच्छेद हो जाएगा। इस प्रकार तीसरी चुली का समाप्त हुई। अब कहते हैं ये चौथी चुली का प्रारंभ होती है। उन्होंने इसमें हिंदी में नाम नहीं दिए चतुर्थ चुली का। अच्छा, चौथी चुली का यहाँ प्रारंभ करते हैं। ऊपर लिखा है चौथी चुलिया। नीचे लिखा है फुटनोट में चौथी चुलिया इति पाठो नास्ती। ठीक है। हाँ, किसी प्रति में नहीं है, कोई बात नहीं। अब हम इसमें से पहला सूत्र पढ़ेंगे। तथ इमो विधियो महादंडो कादवो भवति। पहला महादंडक हमने देखा कौन सा, तिर्यंच और मनुष्य मिथ्यादृष्टि, भव्य मिथ्यादृष्टि सम्यक्त्व के अभिमुख ऐसे जो है तो उनके कितने प्रकृतियों का बंध होता है उसको बताने वाली वो चुलिका थी। अब ये यहाँ द्वितीय महादंडक बताएंगे। तीन महादंडकों में से यह द्वितीय महादंडक कहने योग्य है। शंका, प्रथम महादंडक से अभिन्न इस दंडक के द्वितीयपना कैसे है, यानी जैसे पहले महादंडक है वैसे यह द्वितीय भी है तो उसमें यह कुछ खास विशेषता क्या है, तो उसका समाधान नहीं, क्योंकि प्रकृतियों के भेद से और स्वामित्व के भेद से दोनों दंडकों में भेद पाया जाता है। कुछ प्रकृतियां अलग है और स्वामित्व ने कौन बांध रहा है, पहले तो तिर्यंच और मनुष्यों की बात की थी, अब कौन उसको बांधने वाला है उसकी अपेक्षा से भी यहाँ भेद है। अब कहते हैं ये कौन बांध रहा है, तो देखो ये जो दूसरा सूत्र है ना उसके अंत में देखना, प्राकृत में परम सम्मत्ता ही मुह अधो सत्तमाय पुड़विये नेरयम वच्च देवो वा नेरयो वा। ये बंद कौन कर रहे हैं, देव और नार की, एक्सेप्ट सातवें नरक के नार की। सातवें नरक के नार की को छोड़कर अन्य नार की और सभी देव जो प्रथमोपशम सम्यक्तों के सन्मुख है वे इन प्रकृतियों का बंद करेंगे। कौन सी प्रकृतियां उसके अभी लिस्ट बता रहे हैं, अभी हम सूत्र पढ़ेंगे। पंचन्नम नानावर्णीयम, नवन्नम दंसनावर्णीयानम, सादावेदनीयम, मिच्छत्तम सोलसन्नम कसायानम, पुरिसवेद हस्सरदि भय दुगुंचा, आऊम चणो बंधदि। ये उतने तो बनते हैं, पहले बताए थे, अभी आयु नहीं बनते। फिर मनुष्यगदि, पंचेंद्रिय जादि, ओरालिय तेजा कमय शरीर, समचौरस संठानम, ओरालिय शरीर अंगोभंगम, वज्रिस संगणनम। यहाँ वज्र ऋषभ सहन लिया है। वर्ण गंधरस फासम, मनुष्यगदि पावगान पूवी, अगुरु अलहु उवघाद परघाद उत्साह पसत्थ विहाय गदी, तस बादर पज्जत पत्तेय शरीर, स्थिर शुभ सुभग सुसर आदेज जसकित्ति निमिण उच्चागोदम पंचन्नम अंतरायणम एदाओ पैडियो बंधधी कौन तो पढ़म सम्मत्ता हिमुहो अधो सत्तमाय पुढ़विये नेरयम वज्ज देवो वा नेरयो वा। अब इसी का अर्थ देखते हैं। फिर प्रथम ऑप्शन सम्यक्तो के अभिमुख देव तथा नीचे सातवी पृथ्वी के नारकी को छोड़कर, ये कॉमा नहीं चाहिए वहां, शेष नारकी जीव यानी पहले छह पृथ्वी के नारकी कौन कौन सी प्रकृतियां बांधते हैं अभी उसकी लिस्ट बता रहे हैं। पांचों ज्ञानावरणीय, नवो दर्शनावरणीय, साता वेदनीय, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी आदि सोलह कषाय, सोलह करना सोलह हुआ है, पुरुष वेद, हास्य रति, भय जुगुप्सा, इन प्रकृतियों को बांधता है किंतु आयु कर्म को नहीं बांधता है। चार आयु कर्म की बंध विचित्र तो वहां पर हो ही जाएगी। मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक शरीर अंगोपांग, वज्र ऋषभ नाराज सहनन, वर्ण गंध रस स्पर्श, मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहाय गति, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर, स्थिर शुभ कौमा देना, सुभग सुस्वर आदेय यशस कीर्ति निर्माण उच्च गोत्र और पांचों अंतराय, इन प्रकृतियों को बांधता है। देखो ये मनुष्य गति वाला है ना, नाम कर्म के साथ वो मनुष्य गति वाला बंद होगा तो देव और नार की जो इसके सन्मुख है, परंतु मनुष्य गति जब बांधता था, अब निकालना उसमें कौन कौन से ऑप्शन थे, उसमें मनुष्य गति के साथ कोई अप्रशस्त प्रकृतियां भी बांधते थे ना। देखो ये नाम कर्म के साथ मनुष्य गति संबंधी 29 वाला 120 पृष्ठ पर उसके साथ कंपेयर करेंगे ना हम, तो क्या डिफरेंस पड़ा वो बात ख्याल में आएगी। 120 पृष्ठ और यहाँ 140 पृष्ठ, इसके हम कंपेयर करेंगे। वो तो ज्ञानावरण की तो ध्रुवबंदी है तो उसकी बात नहीं, यानी पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण जो है और पांच अंतराय वो तो बंधेगी, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय जुगुप्सा वो तो बंधेगी, परंतु यह पुरुष वेद बंध रहा है नहीं, वहां तो नाम कर्म की बात है, हम जो वहां नहीं लिखे उसकी बात पहले कहेंगे। मोहिनी में क्या डिफरेंस है, वहां भी मिथ्यात्व और सोलह कषाय बंद रहे थे, यहां भी बंद रहे, वहां तो तीन वेदों में से एक वेद बन रहा था, अभी यहाँ पुरुष वेद बन रहा है, बराबर। वहां हास्यरति या शोकरति बन रहा था, यहाँ हास्यरति बन रहा है। भय जुगुप्सा वहां भी बनती है, यहाँ भी बनती है, क्योंकि वो ध्रुवबंदी है। आयु का बंध वहां का नाम कर्म जो मनुष्य गति संबंधी, ये नारकी है या देव है, वो कौन सी आयु बांधता था, मनुष्य और तिर्यंश की आयु बांधता था, यहाँ तो दोनों ही आयु नहीं बांधेगी इस काल में, दोनों आयु यानी वहां हम चार आयु का बंध विच्छेद हुआ ऐसा नहीं कहेंगे, दो आयु का बंध विच्छेद, जो बनती नहीं थी उसकी विच्छेद कहेंगे नहीं हम, क्या ना, तो यहाँ दो आयु का बंध विच्छेद हुआ कहेंगे, समझ में आता है। अब यहाँ और बात है, उच्च गोत्र नीच गोत्र बन सकता था, अभी यहाँ उच्च गोत्र ही बंधेगा, और वहां पर वेदनीय साता या असाता बनता था, यहाँ साता वेदनीय बनेगी। अब नाम कर्म में क्या डिफरेंस है वो यहाँ हम लिस्ट देख कर जान सकते हैं। देखो ये मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति ये तो समान है, औदारिक तेजस, कार्मण शरीर ये तो सब समान है यहाँ पर। अब यहाँ वहाँ छह संस्थानों में से एक था, अब यहाँ समचतुरस्र संस्थान ही है, फिर छह सहनों में से कोई एक था, और यहाँ एक वज्र ऋषभ नाराज सहनन ही बांधेगा, बाकी अगर उपघात परघात दो विहाय गति में से एक था, और यहाँ एक प्रशस्त विहाय गति होगी। वहाँ स्थिर या अस्थिर था, यहाँ स्थिर, ये सभी है ना, शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, दोनों में से जो कुछ एक एक था, यहाँ सभी प्रशस्त प्रकृतियाँ ली है, स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदेय और यशस कीर्ति, ये दोनों में डिफरेंस है। जो वहाँ बंध योग्य थी उसमें से इतनी इतनी प्रकृतियाँ अभी नहीं बंधेगी, शुभ प्रकृतियाँ बंधेगी। अब शंकाकार पूछता है 141 पृष्ठ पर आना। अभी प्रथम महादंडक में जिस प्रकार औदारिक शरीर और औदारिक शरीर अंगोपांग इन प्रकृतियों का बंध विच्छेद हुआ है, उस प्रकार उस ही विशुद्धि में वर्तमान यानी रहने वाले देव और नारकियों के उन प्रकृतियों का बंध विच्छेद क्यों नहीं होता? क्या कहते हैं? प्रथम ऑप्शन सम्यक तो प्राप्त करने वाले जो मनुष्य और तिर्यंच है, बराबर, तो उसमें हमने क्या देखा था कि 33वें स्थान पर औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग इनके बंधे के विच्छेद हो गए। तो कहते ये विशुद्धि की अपेक्षा नारकी और देव भी उसी पोजीशन में है कि सम्यक तो के अभिमुख है, उनकी भी उतनी ही विशुद्धि है, फिर उनको ये औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग का बंधक क्यों नहीं रुक गया, ये प्रश्न है। समाधान, सहकारी कारण रूप मनुष्य गति और तिर्यक गति के उदय से वर्जित यानी उदय से रहित अकेली विशुद्धि उन प्रकृतियों के बंध विच्छेद करने में समर्थ नहीं है। क्या कहते हैं? जिसको मनुष्य गति और तिर्यंच गति का उदय है और जो ऐसा प्रायोगिक लब्धि में आया है, ऐसे जीव को ही उतनी विशुद्धि से औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग के बंध का विच्छेद होगा। परंतु अकेली विशुद्धि से वो विच्छेद ऐसे नहीं, उसके साथ साथ मनुष्य गति वाले के इतनी विशुद्धि में उसका विच्छेद होगा, परंतु देवनारकियों को उतनी विशुद्धि में इसका बंध विच्छेद नहीं होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं ना, मनुष्य गति वाले को या तिर्यंच गति वाले को जो प्रायोगिक लब्धि में है, उनको विशुद्धि के कारण अभी देवगति का बंध हो रहा है और देवगति के साथ वो उसकी यथायोग्य प्रकृतियां बंधेगी। अब ये जो देव और नारकी है उनके उतनी विशुद्धि के साथ मनुष्य गति का बंध हो रहा है, तो मनुष्य गति के साथ तो ये बंधेगी ही औदारिक औदारिक अंगोपांग, चले तो उनके लिए ये बंध की विच्छित्ति नहीं होगी। अब ये सातवें नारकी को छोड़ दिया था, उसके तो तिर्यंच गति का बंध। तो देखो क्या कहते हैं, सहकारी कारण रूप यानी निमित्त रूप, सहकारी कारण यानी निमित्त कहना, मनुष्य गति और तिर्य गति के उदय से वर्जित यानी रहित अकेली विशुद्धि उन प्रकृतियों के बंध विच्छेद करने में समर्थ नहीं है। क्योंकि कारण सामग्री से उत्पन्न होने वाली कार्य की विकल कारण से उत्पत्ति का विरोध है। क्या कहते हैं? कारण सामग्री ने कारण यानी विशिष्ट कारण से उत्पन्न होने वाली जो बातें हैं, जो कार्य है, जब वो कारण नहीं रहेगा तो वो कार्य भी नहीं होगा। यह तो निमित्त की अपेक्षा कथन कर रहे हैं। जब जब कार्य होता है तब उपादान और निमित्त दोनों ही कारण वहां उपस्थित रहते हैं। कार्य रूप तो उपादान स्वयं परिणमन होता है उसका, निमित्त की उपस्थिति होती है, परंतु निमित्त की अनुपस्थिति में ही कार्य हो गया ऐसा भी नहीं होगा, उपस्थिति मात्र है उसकी, दोनों ही कारण विद्यमान रहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, यहाँ कारण सामग्री से उत्पन्न होने वाले कार्य की विकल कारण, विकल कारण यानी भी वो कमजोर कारण, विकल कारण या कारण का अभाव ऐसा भी कहते हैं। जैसे हम विकल इंद्रियां कहते ना, पंचेंद्रिय जीव यानी सकल इंद्रिया वाला पंचेंद्रिय, और विकल यानी कम है कुछ इंद्रिया, तो उसको विकल इंद्रिय कहते हैं। तो विकल कारण से उत्पत्ति का विरोध है, जहां वो कारण विद्यमान नहीं है तो वहां उसकी उत्पत्ति भी नहीं होगी। अर्थात जो कार्य कारण सामग्री की संपूर्णता से उत्पन्न होता है, सभी कारण जहां उपलब्ध है, कारण सामग्री की संपूर्णता है ने सभी कारण वहां उपलब्ध है, वह कारण सामग्री की अपूर्णता से उत्पन्न नहीं हो सकता। कारण सामग्री वहां कुछ शॉर्ट है, अभी निमित्त वहां उपस्थित नहीं है, इसलिए वो कार्य भी नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि देव और नारकियों में औदारिक शरीर आदि उन प्रकृतियों का ध्रुवबंध संभव है। देव और नारकियों के तो औदारिक शरीर का ही बंध होता है, इसलिए उनके लिए वो ध्रुवबंध कहाँ, क्योंकि उनके तो अन्य कोई प्रकृति का बंध ही नहीं है, उनके तो वैकिरिक शरीर अंगोपांग तो बंधेगे ही नहीं, उनके तो औदारिक शरीर अंगोपांग ही बंधेगा। मिथ्या दृष्टि, जनरल मिथ्या दृष्टि जीव भी या सम्यक दृष्टि भी जीव हो वहाँ क्या, तो मनुष्य गति बांधेगा, औदारिक औदारिक अंगोपांग बांधेगा, तो ये उनके लिए ये ध्रुवबंध है। दूसरी बात, हाँ, ध्रुवबंध संभव, इसलिए उनका बंध विच्छेद नहीं होता है। इसी प्रकार वज्रषभ नाराज सहनन के इस के ऊपर बिंदी देना, सहनन के भी बंध विच्छेद में कारण कहना चाहिए, यानी वज्रषभ नाराज सहनन की बंध विच्छेदी नहीं होगी उनके लिए। अब आउगम च न बंध दी, इस वाक्य में पठित च शब्द समुच्चयार्थक है, अतएव नहीं बंधने वाली अन्य भी प्रकृतियों को सूचित करता है, यानी वह असाता वेदिनी नहीं बंधेगा, वो अस्थिर अशुभ वगैरह नहीं बंधेगी, उसके लिए वो च शब्द डाला उन्होंने। वे नहीं बंधने वाली प्रकृतियां कौन सी है? असाता वेदनीय, स्त्री वेद, नपुसक वेद, अरति, शोक, आयु चतुष्क, नरक गति, तिर्यक गति, देव गति, एकेंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, तीनद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति, वैकिरिक शरीर, आहारक शरीर, समचतुरस्र संस्थान को छोड़कर शेष पांच संस्थान, वैकिरिक शरीर अंगोपांग, आहारक शरीर अंगोपांग, वज्रषभ नाराज सहनन को छोड़कर शेष पांच सहनन, नरक गति प्रायज्ञानुपूर्वी, तिर्यक गति प्रायज्ञानुपूर्वी, देव गति प्रायज्ञानुपूर्वी, अप्रशस्त विहाय गति, आतप, आताप है ना, उसको आतप करना, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण शरीर, अस्थिर अशुभ दुर्भग दुस्वर अनादेय, अयशस कीर्ति, निज गोत्र और तीर्थंकर, ये नहीं बंधने वाली प्रकृतियां हैं। इतनी उनके नहीं बनती, नहीं बंधने वाली प्रकृतियों की लिस्ट बता दी उन्होंने, कौन सी बनती है वो भी उन्होंने पहले बता दी। इन प्रकृतियों के बंध विच्छेद का क्रम जिस प्रकार प्रथम महादंडक में कहा है उसी प्रकार यहाँ पर कहना चाहिए। इस प्रकार चौथी चूलिका समाप्त हुई, यानी उनके वो प्रकृति बंधापसरण के स्थान कौन कौन से होते हैं, अभी अपने स्थान निकालना। तो नरकायु का तो उनके बंध होता ही नहीं है, इसलिए वो स्थान उनके नहीं है। तिर्यक आयु का और मनुष्यायु के जो बंध स्थान है वो उनके नहीं हो गए, तो उनके प्रकृति बंधापसरण तिर्यक आयु का होगा और मनुष्यायु का होगा, क्योंकि नरकायु और देवायु उनके बनती ही नहीं है, इसलिए उनको प्रकृति बंध की विच्छित्ति हुई ऐसा नहीं कहेंगे। विच्छित्ति उसी को कहते हैं जिसका बंध हो रहा है और अभी रुक गया है। जैसे यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति की बंध विच्छित्ति शब्द कभी ही नहीं आया, क्योंकि उसका वो बंध हो ही नहीं रहा था। आहारक का तो बंध हो ही नहीं रहा है, तो उसकी विच्छित्ति नहीं कहेंगे। तो प्रकृति बंध अपसरण कहो या बंध विच्छित्ति कहो, जो प्रकृतियां बंध रही थी उसमें से कौन सी रुक गई है उसको कहेंगे। तो यहाँ उनके लिए यहाँ पहले में पहले तिर्यंचायु का बंध रुक जाएगा, फिर मनुष्यायु का बंध रुक जाएगा। पांचवा जो स्थान नरगति नरगत्यानपुरी, वो भी उनके था ही नहीं है, तो उसका भी सवाल नहीं है। आगे देखिए, सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण भी उनके बंध ही नहीं है, तो वो भी कोई स्थान नहीं हो गया उनके। द्विंद्रियादिक भी बनते ही नहीं है, तो वे भी स्थान उनके नहीं होंगे। तो देखिए दूसरा और तीसरा है, और फिर जाके द्विंद्रिय का, तीन्द्रिय का, चतुर्द्रिय का, असंगी का, वो तो है ही नहीं उनके वो। संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त वाला उनको नहीं होगा, बराबर, वो एक वाला उनके नहीं रहेगा, जो पहले बनता था वो नहीं बनेगा अभी नहीं, मगर अपर्याप्त वाला उनके बनता ही नहीं है, वो भी नहीं लेना, सॉरी हाँ, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त उनके बनता ही नहीं है, तो उसको लेना ही नहीं यहाँ पर। यानी पहले दो आयु के लिए हमने, और बाद में देवों के लिए वो एकेंद्रीय स्थावर आतप वगैरह बनने योग्य है उनके बहुनत्रिक में और उसमें, तो वो उनके लिए एक स्थान चला जाएगा, यानी उसकी बंदे विच्छित्ति होगी। जो पहले स्वर्ग में जो है या बहुनत्रिक के देव है उनके तो बनते थे, पर नरक में तो वो भी नहीं है, तो उनके लिए वो भी नहीं रहेगा। विच्छित्ति किसको कहेंगे, जो बनने योग्य थे उसमें से। अभी वो भाई ने बताया था ना, तो नरक में तो 101 का है बंदा और ऊपर 104 का है, हाँ, वो एकेंद्रीय स्थावर आतप वाले तीन मिला देंगे तो वो 104 हो जाते हैं, तो उसमें से वो एक स्थान देवों के लिए, नरक के लिए तो वो भी बंदे विचित्र नहीं कहेंगे हम। उसके बाद ये तीर्य गति वाला लेना, तीर्य गति, तीर्य प्राज्ञान पूर्य उद्योत वाला नहीं होगा, निज गोत्र का रुक जाएगा, या अप्रशस्त विहाय गति दुर्भग दुस्वर अनादेय वाला वो नहीं रहेगा, और बाकी वो बाकी संस्थान और सहनन वाले स्त्री वेद नहीं रहेगा। इस तरह आगे के उनके रहेंगे, वो 33 वाला मनुष्य गति वाला तो उनको है, उसका बंध नहीं रुकेगा, परंतु आगे वाला जो है असाता वेदनी अरति शोक अस्थिर वो उनके रहेगा। तो देव के लिए और नारकीलिक के लिए वो प्रकृति बंधापसरण स्थान उतने कम हो गए, क्योंकि वो बनते ही नहीं थे तो वो रुक गए ऐसा हम कह नहीं सकते, तो उनके लिए बंधापसरण के स्थान अलग है। यही यहाँ बताने की उनके जो द्वितीय महादंडक में वही उन्होंने बात बताई है। इस प्रकार चौथी चूली का समाप्त हुई, अब तीसरा महादंडक बताएंगे। तीसरा महादंडक और पांचवी चूली का, बराबर, चूली का पांचवी है, और महादंडक तीन है ना, एक पहला तो प्रथम ऑप्शन सम्यक तो के अभिमुख तिर्यंच और मनुष्य कौन सी प्रकृतियां बांधते हैं, फिर सातवें नारकी को छोड़कर देव और नारकी कौन सी प्रकृतियां बांधते हैं, अब कौन रह गए सातवें नरक के नारकी जो सम्यक तो के अभिमुख है, वे कौन सी प्रकृतियां बांधेंगे वो अभी कहेंगे। तो अपनी पांचवी चूली का प्रारंभ होती ऊपर पढ़ेंगे पंचमी चूलिया, तथ्य इमो तदियो महादंडो कादवो भवदी, इसको एक नंबर देना। उन तीन महादंडकों में से यह तृतीय महादंडक कहने योग्य है। शंका, इस महादंडक के तृतीयपना नहीं कहने पर भी जाना जाता है, क्योंकि इनके दो पूर्व दंडक पाए जाते हैं, तो यह तृतीय शब्द क्यों लिखा ऐसा कहते हैं, पहले दो के बाद अभी तीसरा ही बचा है। समा नहीं, क्योंकि युक्तिवाद में अकुशल ऐसे क्या कहते हैं जो इतना भी नहीं डिराइव कर सकते, इतना भी अनुमान नहीं लगा सकते कि दो हो चुके अभी तीसरा है, ऐसे शब्द नयानुसारी शिष्यों के, शब्द नयानुसारी ने जो शब्द में कहेंगे उसको ही पकड़ने वाले, उसको ही ग्रहण करने वाले शिष्यों के अनुग्रह के लिए यहाँ पर इस महादंडक के तृतीय शब्द कहा गया है। अब आगे वो पूरा ही कौन सी लिस्ट है वो बताएंगे। दूसरे सूत्र के अंत में लिखा है, देखो, एदाओ पयड़ियो बंददी परम सम्मत्ता ही मुहो अधो सत्तमाये पुड़वीये नेरयो, यानी प्रथमोपशम सम्यक के सन्मुख ऐसा जो सातवें नरक का नारकी है वो इतनी प्रकृतियों को बांधता है या इन प्रकृतियों को बांधता है। अब उसकी लिस्ट पढ़ेंगे। पंचन्नम नानावर्णियाणम, नवन्नम दंसनावर्णियाणम, सादा वेदनीयम, मिच्छत्तम सोलसन्नम कसायाणम, पुरिस वेद हस्तरदि भय दुगुंचा, आउगम च न बंधदि। अब ये नाम कर्म की बता रहे। तिरिक्ख गदि पंचिंद्य जादि, देखो अन्य तो जीव मनुष्य गति बांध रहे थे, अन्य देव नार के निकालना पहले मनुष्य गति लिखा है ना वहां द्वितीय महादंडक में लिखा था मनुष्य गति पंचेंद्रीय जाति वगैरह वगैरह। अब यहाँ यह जीव तिर्यंच गति को बांध रहा है तो तिरिक्ख गति पंचेंद्रीय जाति ओरालिय तेजा कम्मय शरीर समचौरस संठान ओरालिय अंगोवंग वज्रिस संगणन। तिर्यंच गति के साथ ये वज्र शब्द उसमें भी होता है ना, औदारिक शरीर है तो औदारिक शरीर के साथ छह संस्थान छह सहनन में से यहाँ तो एक वज्र ऋषभ सहनन ही बांध रहा है। वर्ण गंध रस फास तिरिक्ख गदि पाउगानु पूवी अगुरु अलहु उवघाद परघाद उत्साहम उज्जोवम सिया बंधदी सिया न बंधदी। यानी उद्योत को बांधेगे या नहीं भी बांधेगे, दैट इज ऑप्शनल है ना। उद्योत को सभी नहीं बांधते तो कोई जो बांधेंगे कोई नहीं भी बांधेंगे। पसत विहाय गति तस बादर पज्जत पत्ते शरीर। अब ये स्थिर वगैरह उसमें से ये शुभ प्रकृतियों बांध रहे। स्थिर शुभ सुभग सुसर आदेज्य जसकित्ति निमिण नीचा गोद तिर्यंच गति बांध रहा है, इसलिए यहाँ उच्च गोत्र न लेते हुए नीच गोत्र लिया है। तिर्यंच गति के साथ साथ वो नीच गोत्र होता है। पंचन्न मंत्रायणम एदाओ पयड़ियो बंधदी पढ़म सम्मत्ता ही मुहो अधो सत्तमाय पुढ़विये नेरयो। ने ये तिर्यंच गति है ना, इसलिए उसके साथ उद्योत तो ऑप्शनल है, परंतु जहाँ तिर्यंच गति बन रही है वहाँ नीच गोत्र बनता है। जहाँ नरक गति बनती है उसके साथ साथ नीच गोत्र है। मनुष्य गति और देवगति के साथ उच्च गोत्र होता है। वो उच्च गोत्र नीच गोत्र उसका ऑप्शन है परंतु बनता है। उस देवगति के साथ तो उच्च गोत्र बनेगा। देखो अब इसको ही हम हिंदी में पढ़ेंगे। प्रथमोपशम सम्यक्तो के अभिमुख ऐसा नीचे सातवीं पृथ्वी का नारकी मिथ्या दृष्टि जीव पांचों ज्ञानावर्णीय नवो दर्शनावर्णीय साता वेदनीय मिथ्यात्व अनंतानुबंधी आदि सोलह कषाय पुरुष वेद हास्य रति भय जुगुप्सा इन प्रकृतियों को बांधता है किंतु आयु कर्म को नहीं बांधता है। कितने आयु में से वो बांधने योग्य, तो मनुष्य आयु तिर्यंच आयु थी, अभी उसमें से आयु कर्म को नहीं बांधेगा परंतु तिर्य गति को बांधेगा। यहाँ मनुष्य पहले ऊपर के देव और सभी देव और ऊपर के नार की मनुष्य गति को बांध रहे थे, अब ये तिर्य गति को बांध रहा है सातवें नरक का नार की। तिर्य गति पंचेंद्रिय जाति औदारिक शरीर तेजस शरीर कार्मण शरीर समचतुरस्र संस्थान औदारिक शरीर अंगोपांग वज्र ऋषभ नाराच सहनन वर्ण गंध रस स्पर्श तिर्यक गति प्रायज्ञानुपूर्वी अग्रु लघु उपघात परघात उच्छ्वास इन प्रकृतियों को बांधता है। उद्योत प्रकृति को कदाचित बांधता है और कदाचित नहीं बांधता है, वो बंधेगी ऐसा कोई रूल नहीं है। प्रशस्त विहार गति त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर स्थिर शुभ स्थिर के बाद कौमा देना स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदेय यशस कीर्ति निर्माण नीच गोत्र और पांचों अंतराय कर्म इन प्रकृतियों को बांधता है। ये सातवें नरक के नारके के लिए अलग रूल है वो बताया। शंका तिर्य गति तिर्य गत्यानुपूर्वी उद्योत और नीच गोत्र इन प्रकृतियों की यहाँ पर बंध विच्छित्ति क्यों नहीं होती, जो अन्य में बताई थी अब यहाँ क्यों नहीं होती है, उसका समाधान नहीं, क्योंकि भव संबंधी संकलेश के कारण, भव संबंधी संकलेश ने सातवें नरक का नारकी है तो उसको अत्यंत तीव्र संकलेश परिणाम है वहां पर, ये भव संबंधी संकलेश है। जैसे हम भव संबंधी अवधि ज्ञान कहते हैं ना, देव और नारकी उनको तो अवधि ज्ञान होता ही है, वो भव संबंधी है, वैसे यहाँ भव संबंधी संकलेश के कारण शेष गतियों के बंध के प्रति अयोग्य ऐसे सातवीं पृथ्वी के नारकी मिथ्या दृष्टि के तिर्यक गति प्रायज्ञानुपूर्वी और नीच गोत्र को छोड़कर सदाकाल इनकी प्रतिपक्ष स्वरूप अन्य प्रकृतियों का बंध नहीं होता, सदाकाल लिखा हुआ। तथा विशुद्धि के वश से ध्रुवबंधी प्रकृतियों का बंध विच्छेद नहीं होता है, विशुद्धि बढ़ गई फिर भी ये उनके लिए ध्रुवबंधी हो गई ना वहां पर, उसका बंध विच्छेद नहीं होता। अन्यथा उसी विशुद्धि के वश से ज्ञानावरण आदि प्रकृतियों के भी बंध विच्छेद का प्रसंग आता है, यदि वो ध्रुवबंधी का ही बंध विच्छेद होने लगेगा विशुद्धि के कारण तो ज्ञानावरण भी ध्रुवबंधी है, उसका भी बंध विच्छेद होना चाहिए, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि वैसा मानने पर अनवस्था दोष आता है। आउम च न बंधदी इस वाक्य में पठित च शब्द के द्वारा सूचित अबध्यमान प्रकृतियां यहां जानकर कहना चाहिए कौन सी नहीं बांधती है, बनती है च शब्द में, तो ये अस्थिर अशुभ दुर्भग वगैरह वो कौन से नहीं बनती उसको जानना चाहिए, ऐसा कहते उसका विशेषार्थ। च शब्द से सूचित प्रकृतियां इस प्रकार है, असता वेदनीय, स्त्री वेद, नपुसक वेद, अरति शोक, नरक गति, मनुष्य गति, देव गति, एकेंद्रीय जाति, द्विंद्रीय जाति, तीन्द्रीय जाति, चतुरिंद्रीय जाति, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान, कुंडक संस्थान, यानी पांच संस्थान समचतुरस्रत्व को बांधता है, अन्य को नहीं बांधता। वैकिरेक शरीर अंगोपांग, आहारक शरीर अंगोपांग, वज्र नारा सहनन, अर्धनारा सहनन, कीलित सहनन और असंप्राप्ता सुरपाटिका सहनन, यानी वज्र ऋषभ को छोड़कर बाकी सब पांच सहनन, ये कौन से नहीं बांधता उसकी लिस्ट चल रही। नरक गति प्रायज्ञानुपूर्वी, मनुष्य गति प्रायज्ञानुपूर्वी, देव गति प्रायज्ञानुपूर्वी, आतप, अप्रशस्त विहार गति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, आतप को क्यों नहीं बांधता और उद्योत को क्यों बांधता है? आतप प्रकृति एकेंद्रीय के साथ बनती है, वो भी पर्याप्त एकेंद्रीय, एक इंद्रिय का बंद करने वाला है ना, पर्याप्त वाला बंद, कितने प्रकृतियों का देखा था याद है? तिर्यंश गति के हमने पांच बंद देखे थे, 30 वाला, 29 वाला, 26 वाला, 25 वाला और 23 वाला, तो ये आतप वाला कौन सा होगा? मैंने बता दिया एक इंद्रिय पर्याप्त को बनता है। हाँ 26 वाला आतप को बांधने वाली बात की ना, वो 26 वाला, बिना आतप का वो 25 वाला होगा, अपर्याप्तों का 23 वाला होगा। ये आतप, अप्रशस्त विहार गति, अब ये सभी अप्रशस्त प्रकृतियां नहीं बांधता उसकी लिस्ट आ जाएगी। स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुष्फर, अनादेय, अयशस्कीर्ति, तीर्थंकर और उच्च गोत्र, इन प्रकृतियों को प्रथमोपशम सम्यक्तों के अभिमुख हुआ सातवीं पृथ्वी का मिथ्यादृष्टि नारकी नहीं बांधता है। इस प्रकार पांचवी चूली का समाप्त हुई, ये छोटी छोटी चूली का है। इस प्रकार कितनी और किन प्रकृतियों को बांधता है यह जो सूत्रोक्त पद है उसका व्याख्यान समाप्त हुआ। अब अगली चूलिका शुरू हो जाएगी। इसमें तो सभी चूलिका ही है, तो छठ चूलिया, ये छठी चूलिका अभी प्रारंभ होती है। उसमें पहला सूत्र, केवड़ी कालट ठिये ही कम्मे ही सम्मतम लभती वा न लभती वा न लभदीति विभाषा। क्या कहते हैं, काल की अपेक्षा कितनी स्थिति वाले कर्मों के द्वारा सम्यक्त को प्राप्त करता है अथवा नहीं प्राप्त करता है। इस वाक्य के अंतर्गत अथवा नहीं प्राप्त करता है इस पद की व्याख्या करते हैं। क्या कहते हैं, ये जो प्रथम उपशम सम्यक्त की बात उन्होंने उठाना प्रारंभ की है, उसमें से कौन सी प्रकृतियों को बांधता है ये बात तो बता दिए। तो अब कहते हैं कितनी स्थिति को बांधने वाले कर्मों के द्वारा वो प्राप्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में सम्यक्त के अभिमुख जो है जीव, वो कितनी स्थिति वाला कर्म बांधता है या कितनी स्थिति वाला नहीं बांधता है। उसमें ऐसा है ना, जो 70 कोड़ा कोड़ी वाला बंद करता हो मिथ्यात्व का, उत्कृष्ट बंद जिसके होता है स्थिति का, ऐसे जीव को वो प्रथम ऑप्शन सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हो सकती है। दूसरा ऐसा भी है उसमें अत्यंत हीन, यानी कौन सा श्रेणी में जैसा बंद होता है अन्य कर्मों का, जैसे एक सागर है या जो कुछ कम सागर वाला बंद है, श्रेणी में कितना कितना होता है, जैसे असंगी जैसा 1000 सागर वाला होगा या 100 सागर वाला होगा, 50 सागर वाला, 25 सागर वाला, एक सागर वाला, इतना कम बंद करने वाले को भी प्रथम ऑप्शन सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे दोनों, ये तो स्थिति, तो इसलिए प्रश्न क्या पूछा, कितनी स्थिति वाला जीव ये सम्यक्त प्राप्त कर सकता है, तो उसके लिए अथवा नहीं कर सकता, कर सकता है अथवा नहीं कर सकता। तो उसमें तो पहले हमें कर्म की स्थिति क्या होती है ये सब समझाना पड़ेगा, उत्कृष्ट स्थिति क्या होती है, क्योंकि उसी में स्थिति के भेद बताएंगे ना, कितनी स्थिति वाला प्राप्त करता है यानी स्थिति कितनी कितनी हो सकती है उसको भी बताना पड़ेगा। तो ये अभी विषय वही चलेगा, उत्कृष्ट स्थिति प्रत्येक कर्म की कितनी हो सकती है ये बताएंगे पहले। इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, काल की अपेक्षा कितनी स्थिति वाले कर्मों के होते हुए जीव सम्यक्त को प्राप्त करता है, और काल की अपेक्षा कितनी स्थिति वाले कर्मों के होते हुए सम्यक्त को नहीं प्राप्त करता है, यह एक प्रश्न है। इस पृच्छा सूत्र का, पृच्छा ने प्रश्नात्मक सूत्र, द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन लेकर अवस्थान होने से, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा ये कथन करने से संग्रहित समस्त प्रकृत अर्थ का व्याख्यान किए जाने पर उसमें जो सम्यक्त को नहीं प्राप्त करता है यह पद है उसकी विभाषा की जाती है। उसमें दोनों ही पद इंक्लूड है, कितनी स्थिति होने पर करता है और कितनी स्थिति होने पर नहीं करता है। तो पहले नहीं करता है की बात करेंगे, कितनी स्थिति होने पर नहीं करता उसकी बात बताएंगे। उन स्थितियों का प्ररूपण करते हुए आचार्य कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति के वर्णन के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। तो स्थिति कितनी स्थिति वाले नहीं करता है ऐसे जब कहेंगे, तो पहले उन कर्मों की स्थिति कितनी हो सकती है वो कथन आवश्यक है, इसलिए उसको प्रथम उठाएंगे और बाद में उस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। एत्तो उक्कस्यठिदिम वर्ण इस्सामो। अब इससे आगे उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन करेंगे, यानी मैं अभी उस उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन करता हूँ, इसे आचार्यों ने लिखा है। शंका, यहाँ पर कर्मों की स्थिति का निरूपण किस लिए किया जा रहा है, ये स्थिति बताने की आवश्यकता क्या थी, ऐसा इसका शंका है इसकी। उसका समाधान, नहीं, क्योंकि समस्त स्थिति विशेषों का संग्रह करने वाली, स्थिति विशेष यानी अन्य अन्य स्थिति, किसी की कम स्थिति है जैसे मिनिमम है, किसी की और तो ज़्यादा है और ज़्यादा है और ज़्यादा है, तो उत्कृष्ट तक की, तो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक यानी जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक अलग अलग स्थितियां हैं, तो इसको स्थिति विशेष कहते हैं। और सभी स्थितियां जिसमें इंक्लूड है, जिसमें गर्भित है, जब उत्कृष्ट स्थिति बताएंगे तो बाकी जो जघन्य से लेकर मध्यम वाली सभी स्थितियां उसके अंदर ही समा जाती हैं, मैक्सिमम बड़ी स्थिति बताएंगे, जैसे 30 कोड़ा कोड़ी ज्ञानावरणी की बताएंगे। तो यहाँ जो कुछ कम से लेकर वहाँ तक की सभी स्थितियाँ उसमें आ गई, अंतर्मूर्त से लेकर 30 कोड़ा कोड़ी तक की, तो वो उसमें सब समा जाएगी। इसलिए कहते स्थिति विशेषों का संग्रह करने वाली कर्म स्थिति के ज्ञात नहीं होने पर, यानी जिसको कहते उत्कृष्ट स्थिति, यदि हमें पता नहीं हो तो, मालूम न हो तो, यह स्थिति सम्यक्त्व को ग्रहण करने के योग्य है, और यह स्थिति सम्यक्त्व को ग्रहण करने के योग्य नहीं है, इस प्रकार की प्ररूपणा करने का और कोई उपाय न होने से, यदि हमें कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति का पता न हो तो ये स्थिति वाला कर्मों का उसको तो समय तो हो सकता है, और इतनी कर्मों की स्थिति वाले को नहीं हो सकता है, यह कैसे कथन किया जा सकता है, ऐसा प्रश्न है। अथवा कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति को बांधने वाला जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्व को नहीं प्राप्त करता है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए। देखो क्या कहते हैं, कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति को बांधने वाला, ये ज्ञानावरणा की उत्कृष्ट स्थिति, मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति कौन बांधेगा? हाँ, स्थिति और अनुभाग अधिक तीव्र बनते हैं, स्थिति की बात यहाँ। हाँ क्या कहते हैं आप? हाँ संगी पंचेंद्रिय, उसकी तो बात है ही है, और उसके साथ जिसके कषाय ज्यादा है उसके स्थिति ज्यादा बंधेगी। स्थिति और अनुभाग कषाय के अनुसार बनते हैं, है ना? तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जो तीव्र स्थिति का, मैक्सिमम स्थिति का, उत्कृष्ट स्थिति का बंध करने वाला है, वो अभी सम्यक्त्व के अभिमुख नहीं, वो सम्यक्त्व की पात्रता नहीं अभी उसमें, अभी वो सम्यक्त्व प्राप्त करने वाला नहीं है उस अवस्था में। क्या कहते हैं, उत्कृष्ट स्थिति को बांधने वाला जीव, किसको? कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति को बांधने वाला जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्व को नहीं प्राप्त करता है। जो 70 कोड़ा कोड़ी वाला मिथ्यात्व का बंध करता हो तो वो कितना तीव्र मिथ्यात्वी है, जब वो उसका बंध कम करने लगेगा, उसका उदय भी कम हो जाएगा, उसका बंध भी घट जाएगा, मिथ्यात्व भी वो घटने लगेगा, उस अवस्था में जाकर उसको तो पांचों लब्धियों की प्राप्ति पूर्वक सम्यक तो होगा, नहीं तो उसको कोई उपदेश भी सुनाने जावे तो सुनेगा? वो तो विघ्न करेगा सुनाने वाले को। हम देखते हैं ना कि उसको रुचता नहीं वो उपदेश, वो तीव्र मिथ्यात्वी जीव है, तो उसको कहेंगे यहाँ उत्कृष्ट स्थिति बांधने वाला जीव। इस बात का ज्ञान कराने के लिए कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति का निरूपण किया जा रहा है। ये उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है, अलग अलग कर्मों की अलग अलग है, उसकी बात यहाँ बताने जाने वाले हैं। तो ये स्थिति के संबंध में जो कुछ बातें हैं, अब ये इस अभी चुलिका में हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी यहाँ का आगे जो स्थिति किसे कहते हैं वगैरह, ये हम कल देखेंगे, अब तो समय पूरा हो गया। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका।